दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी क्रोध। क्रोध करने से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का तो पतन ही होता है। आगरा के मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रजत कपूर अपने संजय पैलेस वाले क्लिनिक में मौजूद हैं। डॉक्टर कपूर के केबिन में आगरा के जाने माने बिल्डर मिस्टर संदीप सक्सेना का सेशन चल रहा है।
रिलैक्स रिलैक्स, कुछ ही देर में आप गहरी नींद में सो जाएंगे। मेरे 10 गिनने तक आप गहरी नींद में सो जाएंगे। 1, 2, 3।
अरे हटाओ डॉक्टर, 4, 5 क्या लगा रखा है? तुम्हारे ये पेंडुलम और गिनती से कुछ नहीं होने वाला।
संदीप संदीप, ये क्या कर रहे हो? अरे यही तरीका है जानने का कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
What do you mean डॉक्टर? तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ 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 मेरे दिमाग में गड़बड़ है?
देखो संदीप, मैं तुम्हें पिछले 3 सालों से जानता हूँ और ये 3 सालों में एक बात नोटिस की है और वो है तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर।
देखो डॉक्टर, मैं मानता हूँ कि मुझे गुस्सा आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे दिमाग में गड़बड़ है।
जरा सा गुस्सा तो समझ में आता है संदीप, लेकिन उस दिन तुमने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाने को बोला और उसने जरा सी देर कर दी तो तुमने कॉर्डलेस फेंक मारा।
वो तो उसका ध्यान काम में कम और गप्पाबाजी में ज़्यादा होता है।
और उस दिन वॉचमैन को मार दिया क्योंकि दरवाज़ा खोलने में उसने जरा सी देर कर दी,
क्योंकि वहाँ उसे पहले से मौजूद होना चाहिए। कभी टाइम पर नहीं आता, किस बात के पैसे लेता है वो।
देखो संदीप, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
कैसे करोगे तुम मेरी मदद? मैंने कहा तुम्हें कि मुझे मदद चाहिए? मैं पागल हूँ? नहीं, मैंने कब कहा तुमसे कि मुझे मदद चाहिए? तो फिर क्यों मदद करना चाहते हो जब प्रॉब्लम है ही नहीं? साले गलती हो गई मुझसे जो मैं अपने दोस्त के कहने पर तेरे से मिला।
कुछ घंटों बाद मिस्टर सक्सेना अपनी कार से ऑफिस के लिए निकले हैं। गाड़ी सेक्रेटरी मोहन ड्राइव कर रहा है।
सर, वो कोसी कला के हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर हैं, पर वो सरकारी ऑफिसर सतीश हमें एनओसी नहीं दे रहा है।
क्या कहना चाहता है वो?
सर, वो कहता है कि हमने चीटिंग की है और हमारा कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट अप्रूवल के हिसाब से नहीं है।
हाँ तो तुम जानते हो क्या करना है, जिसके नाम कहे 2 फ्लैट बुक करो और मुंह बंद करो साले का। मोहन, क्या कर रहे हो? इस ऑटो को हॉर्न देकर साइड करो यार, इससे आगे निकलो। कब से ये खटमल की तरह खून चूस रहा है।
सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ये ऑटो वाला साइड ही नहीं दे रहा।
इसकी ये मजाल, मोहन ठोक दो इसे, तभी साले को अकल आएगी।
मोहन आगे निकलने की कोशिश में आगे चल रहे ऑटो से कार की हल्की टक्कर हो जाती है। ऑटो का ड्राइवर हाथ में स्पैनर लिए लड़ने पर उतारू हो गया। कार में बैठे मिस्टर सक्सेना अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सके और ऑटो ड्राइवर से स्पैनर छीनकर उसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। दोपहर के 1 बजे रकाबगंज पुलिस स्टेशन में।
ये स्पैनर अपने आप में एक खतरनाक हथियार है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें मामूली सी चोट लगी। जानते हो, तुम्हारी जान जा सकती थी, मौत हो सकती थी तुम्हारी, और इसके बावजूद तुम ये रिपोर्ट वापस लेना चाहते हो?
हाँ सर, क्योंकि गलती मेरी थी, इनकी कोई गलती नहीं थी।
अच्छा, तो जरा मैं भी सुनूं, क्या गलती थी तुम्हारी?
एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम इंस्पेक्टर विराट? अगर ये आदमी मेरे खिलाफ शिकायत नहीं लिखवाना चाहता तो नहीं लिखवाना चाहता, पीछे क्यों पड़े हो जनाब?
हाँ सर, ये अपने रास्ते जा रहे थे, अचानक मैं अपनी ऑटो लेकर बीच में आ गया, वहीं एक स्पैनर पड़ा था जो मुझे लग गया।
सक्सेना, इसको भी खरीद लिया? कितने में खरीदा? तुम सुधरने वाले नहीं हो।
देखो इंस्पेक्टर विराट, अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स जस्ट नॉट योर बिजनेस।
अपने गुस्से पे काबू पाना सीखो सक्सेना, वरना बहुत पछताओगे। तब तुम्हारा ये पैसा, कॉन्टैक्ट्स कुछ काम नहीं आएगा।
मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर विराट। और हाँ, आपके पास फालतू वक्त होगा बकवास करने के लिए? मेरे लिए एक एक मिनट कीमती है, इट मीन्स लॉट्स ऑफ मनी टू मी।
वही तुम्हारा पैसे का गुरूर गया नहीं अभी तक। हाँ, जाति तौर पर ना सही, पर प्रोफेशनली खूब जानता हूँ तुम्हें मिस्टर सक्सेना। मेरे साथ साथ आधा पुलिस डिपार्टमेंट भी तुम्हारे काले कारनामे को जानता है, कैसे तुम सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हो। एक न एक दिन मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा सक्सेना, और तब देखता हूँ तुम्हारा ये पैसा तुमको कैसे बचाता है।
विशफुल थिंकिंग इंस्पेक्टर विराट, कॉलेज के जमाने से बाहर आ जाओ। तुम्हारी औकात मैं तब भी पहचान गया था, और तुम आज भी वही हो, क्योंकि ये कॉलेज का जमाना नहीं है, ये असली दुनिया है। यहाँ के नियम अलग हैं और यहाँ तुम नहीं जीत सकते।
गुड बाय इंस्पेक्टर विराट, मेरी बात को ध्यान रखना सक्सेना।
शाम के 3 बजे मिस्टर सक्सेना के ऑफिस में।
हाँ? मुझे सिखाता है? संदीप सक्सेना को सिखाता है? अरे दौलत क्या पेड़ पर उगते हैं, अरे कमाई जाती है अकल से।
सर, लगता है आज आपका मूड ठीक नहीं है सर।
अबे कैसे ठीक रहेगी, यहाँ तुम लोगों की शक्लें देखनी पड़ती है। सुबह सुबह वहां इंस्पेक्टर की शक्ल देखनी पड़ी, साला ईमानदारी का लेक्चर देता है मुझे। कभी पुलिस वाले की शक्ल मत देखना, पूरा दिन खराब हो जाता है। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू वर्क। वो शांतिनगर का प्लान दिखाओ।
यस सर, ये
रहा सर।
लाइब्रेरी, गार्डन, रिक्रिएशन सेंटर,
स्विमिंग पूल कहाँ है?
लेकिन सर, आपने तो कहा था कि वहां पानी का प्रॉब्लम है,
तो पानी तेरे घर से जाने वाला है?
अरे वैसे भी पेपर पर स्विमिंग पूल दिखाने के लिए नीला रंग चाहिए,
बस तो लगा ना।
अरे NRI प्रोजेक्ट है, ग्लैमरस लगना चाहिए।
अरे बुकिंग के लिए आदमी फंसना चाहिए कि नहीं?
बट सर,
जो मैं कहता हूं करो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ध्यान रखो कि रिटेन कमिटमेंट कोई नहीं होना चाहिए, पेपर पर कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखो।
यस सर।
हेलो।
हेलो सर, आपके लिए फोन है।
मैंने कहा था ना तुझसे, मुझे अभी कोई कॉल नहीं चाहिए।
सर, कोई मिसेज अंजलि है लाइन पर।
हु?
सर, मिसेज अंजलि मेहता है।
अंजलि मेहता, जस्ट पुट आर ऑन लाइन प्लीज।
यस सर।
हेलो अंजलि, हाउ आर यू?
मैं बस सब ठीक है। इतने सालों बाद कैसे याद किया मुझे?
देखो, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पति मुझसे फ्लैट खरीदना चाहते हैं।
संदीप संदीप, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें फोन करना चाहती थी।
आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो?
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता संदीप। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी।
अंजलि प्लीज, मुझे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है?
संदीप, मैं नहीं जानती मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है कि नहीं। इसलिए सिर्फ एक बार, बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे कुछ बातें करनी है मुझे।
अच्छा, अभी कुछ बाकी रह गया कहने सुनने को? अच्छा ये बताओ, कहाँ से बोल रही हो?
अपने घर से।
अंजलि, मैं आज तक नहीं भूला तुम्हें, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल याद है मुझे। याद है तुम्हें वो कॉलेज का आखिरी दिन, जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? इसमें हंसने की क्या बात है, तुम लोग अपना अपना देखो, मैं तो पैसे देकर पास कर जाऊंगा,
वैसे अंजलि, अगर मैं तुम्हें आज प्रपोज करूं तो?
एक मिनट अंजलि, मैं भी तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूं। अब ये सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसे चुनती हो, इस पैसे के ढेर पर बैठे संदीप को या अकलमंद विराट को, यानी मुझे।
संदीप, विराट, जानते हो प्रोफेसर यादव क्या कहते हैं?
क्या?
अगर आपके पास दो रास्ते हैं और चुनना मुश्किल हो तो गो फॉर द थर्ड वन, तीसरे को चुनो।
अरे, क्या कोई और भी है क्या?
अंजलि, अगर तुम मेरे प्रपोज को एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें एक डायमंड रिंग अभी इसी वक्त गिफ्ट करूंगा।
डायमंड रिंग?
हाँ, सोच लो। वैसे भी मिस्टर विराट के पास तो एक फोन कॉल के भी पैसे नहीं होंगे इस वक्त।
ऐसा नहीं कहते संदीप, विराट सबसे अलग है, पढ़ाई में टॉपर है और ईमानदार भी है।
यू आर वेरी एम्बिशियस संदीप, एक दिन तुम जरूर बड़े आदमी बनोगे, बहुत अमीर, पावरफुल, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हारी एक ही कमजोरी है, वो है तुम्हारा क्रोध, गुस्सा।
संदीप, विराट, तुम दोनों शाम को मेरे घर आना, मैं अपना फैसला वहीं बताऊंगी।
चलो, अब मैं चलती हूँ, ठीक 6 बजे तुम दोनों का इंतजार करूंगी।
अंजलि, उस दिन हमारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में था, सो तुमने फैसला किया।
मैं जानती हूँ संदीप, मुझे माफ कर दो, काश मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर पाती।
अंजलि, अंजलि, मैं
तुम्हारे हूं ना संदीप, प्लीज हेल्प मी।
हौसला रखो अंजलि, मैं आता हूँ, मैं तुम्हारे पास आधे घंटे में पहुंचता हूँ।
तुमने उस दिन वो अजीब फैसला क्यों लिया था अंजलि?
क्यों?
मैं तुम दोनों में से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, किसी ना किसी का दिल तो टूटना ही है, फैसला आज करो या कल।
फैसला तो हो चुका है,
मतलब शाम को घर आना, विराट भी होगा वहाँ।
विराट? विराट को क्यों बुलाया है?
अरे संदीप, जाहिर है भाई, अंजलि से मिलने आया हूँ, शायद उसने अपने पापा से मेरे बारे में बात कर ली है, बस वो फैसला सुनाने वाली है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ठीक वैसे ही मिस्टर विराट, जैसे तुम्हें बुलाया है। आज अंजलि को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही होगा। आओ आओ बेटा संदीप, बेटा विराट, बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो, इनसे मिलो। ये है मिस्टर राजेश मेहता, अंजलि के होने वाले पति।
भौचक संदीप और विराट देखते हैं कि सामने एक 55-58 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी है, जिसे अंजलि के पापा राजेश मेहता कहकर बुला रहे हैं। पुराने ख्यालों में खोए संदीप को पता ही नहीं चला कि कब उसकी रेड कलर की मारुति जैन कार मेहता विला के कंपाउंड में एंटर कर चुकी है।
दरवाजा एक 23-24 साल की महिला खोलती है, देखने से ही वो एक हाउसवाइफ लग रही है, उसका चेहरा सूजा हुआ है, जैसे वो अभी अभी पिटकर आ रही हो।
अंजलि, अंजलि, ये क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, बोलो बोलो अंजलि, ये क्या हो गया है तुम्हें, किसने किया ये सब?
मेरे हस्बैंड राजेश ने। वो इंसान नहीं है, वो एक वैसी जानवर है। मेरे शरीर से बहते खून को देखकर उसे खुशी मिलती है।
हाउ डेयर ही, उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें हाथ लगाने की, मैं जान ले लूंगा उसकी। कहाँ है वो, किधर है वो?
दो दिन के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन करने की हिम्मत की है, वरना मैं तो यहाँ कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही हूँ, आजकल तो रोज हाथ उठाने लगे हैं।
तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती मुझसे, हाथ ही काट दूंगा साले की।
तुमने तो आज देखा है ये सब संदीप। मैं तो पिछले 4 सालों से झेल रही हूँ। सुबह शाम वही गालियाँ, मारपीट।
लेकिन तुम इतने सालों तक बर्दाश्त क्यों किया? छोड़ क्यों नहीं देती साले को? थूक क्यों नहीं देती उस कमीने के मुंह पर?
थूक क्यों नहीं दिया? और थूक कर जाती कहाँ? और यहाँ से निकल गई तो वो मुझे जान से मार देगा।
उस कमीने को यही सब करना था तो उस कमीने ने शादी क्यों की तुमसे? और तुमने भी हाँ कर दी इतनी जल्दी शादी के लिए। तुम जानती थी ना अंजलि कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे?
मैं मजबूर थी, पिताजी का कारोबार बंद हो चुका था, उन पर काफी कर्ज था। ऐसे में राजेश ने हमारी मदद की, उसने सारा कर्ज चुका दिया, मगर एक शर्त पर। उसने मुझे खरीद लिया। फिर बाद में उसे पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
अब मैं तुम्हें इस नरक में नहीं रहने दूंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
नहीं संदीप, अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो दुनिया के सामने वो शरीफ बन जाएगा और उसे कहने का बहाना मिल जाएगा कि मैं थी ही बुरी।
अरे ऐसी की तैसी साले की, भौंकने दो उसे। लेकिन तुम आज के बाद हरगिज नहीं रहोगी यहाँ। तुम्हारी बहन है ना बैंगलोर में?
हाँ, तो
कुछ दिनों के लिए उसके पास क्यों नहीं चली जाती तुम?
उसके बाद क्या होगा? और मेरी बहन कब तक रखेगी मुझे?
अरे बाद की बाद में देखेंगे। तुम वहां जाकर डिवोर्स के लिए फाइल करो, तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा, फिर तुम आजाद हो जाओगी।
इस बीच में राजेश को वहां का पता चल गया तो वो मेरा पीछा वहां भी करेगा। तुम राजेश को नहीं जानते हो संदीप। वो बहुत खतरनाक है, वो कल वापस आ रहा है।
मेरा नाम भी संदीप सक्सेना है, देख लूंगा साले को। कल सुबह तुम ठीक 7 बजे बैंगलोर वाली बस स्टैंड पर मिलना।
लेकिन वहां अगर राजेश आ गया तो?
अरे आने दो साले को, अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो देखना मैं क्या हाल करता हूँ उसका।
थैंक यू वेरी मच संदीप, मैं कल ठीक 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगी।
अगले दिन सुबह के 7 बजे बैंगलोर वाली बस स्टैंड पर।
कहाँ रह गई ये अंजलि, कहाँ हो तुम?
अरे भाई साहब, कहाँ है आपकी सवारी? निकलने का टाइम हो गया है,
बस थोड़ी देर और, वो बस पहुंचती ही होगी थोड़ी देर में।
नहीं, निकलने का टाइम हो गया है, अब और लेट नहीं कर सकते।
What the hell?
संदीप गुस्से में उबलते हुए अपनी गाड़ी ड्राइव कर सीधे अंजलि के घर पहुंचता है।
अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, अंजू, दरवाजा खोलो।
दरवाजा एक 60-62 साल का अधेड़ आदमी खोलता है। ये राजेश मेहता है।
अंजलि कहाँ हो अंजलि?
तुम संदीप सक्सेना हो ना?
मैं जो भी हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। अंजलि कहाँ है, किधर है अंजलि?
यह कहते हुए संदीप दरवाजा खोलने वाले को धकियाते हुए अंदर घुस जाता है।
अरे सुनो, देखो ये मेरा घर है, तुम इस तरह से नहीं घुस सकते। अंजलि कहाँ है?
अरे अंजलि यहाँ नहीं है, वो बैंगलोर में है।
तुमने हाथ उठाया उस पर, देख लेना।
क्या बकवास है, अरे मैंने उसे आज तक एक थप्पड़ भी नहीं मारा है।
कहाँ है वो?
अरे मैंने कहा ना, वो बैंगलोर में है, 1 सप्ताह से वो बैंगलोर में है। 7 दिन हो गए उसे अपनी बहन के यहाँ गए हुए।
अच्छा, 7 दिन से वो बैंगलोर में है। मैं उसे कल इसी घर में मिला हूँ। झूठ बोलता है कमीने, बता कहाँ छुपाया है अंजलि को, बता।
यह कहते हुए संदीप बेडरूम का दरवाजा खोलता है। अंदर हर तरफ खून ही खून है। फर्श पर फैले खून को देखकर लग रहा है जैसे कोई लाश घसीटकर इस कमरे से बाहर ले जाया गया है।
अरे ये खून कहाँ से आया?
साले अब बन मत, तूने अंजलि को मार डाला, मेरी अंजू को तूने मार डाला,
नहीं 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 नहीं, अंजलि बेंगलोर में है, ये खून कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम।
तूने अंजलि को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तूने अंजू को मार डाला, अब तू नहीं बचेगा।
यह कहते कहते संदीप पास में रखा फ्लावर पॉट राजेश मेहता के सर पर खींच कर मार देता है। राजेश मेहता चीखते हुए वहीं ढेर हो गए। मौका पाकर संदीप वहां से निकल जाता है। कुछ घंटों बाद,
आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप इस कत्ल के बारे में?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर मेहता की मौत सर पर लगे चोट के कारण हुई है। उनके सर पर बार बार किसी भारी वस्तु के साथ प्रहार किया गया है, तो शायद हथियार मौके से बरामद फ्लावर पॉट ही होगा।
लगता है ये कत्ल जुनून में किया गया है, ना कि प्लानिंग के साथ।
क्या मतलब सर?
मतलब ये कि कातिल वहाँ कत्ल के मकसद से नहीं गया था, पर वहाँ कुछ ऐसी बात हुई कि कातिल को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कत्ल कर दिया है।
सर, ये पड़ोसी हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हम तो अपने घर में ही थे जब ये घटना हुई।
आप कहना क्या चाहते हैं, जरा डिटेल में बताएं।
पहले तो हमें लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी, पर जब चीखें सुनाई दी तो हमने एक आदमी को लाल रंग की कार में भागते देखा। हमने उसका नंबर भी नोट किया है, ये रहा।
BHM 835। अरे, ये तो सक्सेना के लाल कलर की मारुति जैन कार का नंबर है। इस बार तुम हद से गुजर गए सक्सेना, इस बार तुम नहीं बचोगे। साला दिन दहाड़े खून हो जाए और संदीप सक्सेना बच के निकल जाए, मैं होने नहीं दूंगा।
सर, कोई नई खबर?
हाँ, अभी अभी खबर मिली है कि संदीप सक्सेना वो सेंट्रल हाईवे से होते हुए राजनगर जाते हुए देखा गया है।
मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है।
वो सोच रहा है कि कुछ दिन वो अंडरग्राउंड रहेगा और उसके आदमी पैसे के दम पर यहाँ सब ठीक कर देंगे। एक सप्ताह बाद राजनगर फार्म हाउस पर।
अरे, वो इंस्पेक्टर का बच्चा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है।
वकील साहब, आपने अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाला इसका।
पुलिस को इस खून का कोई मकसद, कोई मोटिव नहीं मिल रहा है, बस पूछताछ किए जा रही है। दोस्तों से पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, पुलिस ने तो उसकी वाइफ से भी बात की है।
हैं? वाइफ से?
हाँ, अरे क्या नाम था उसका? हाँ, अंजलि।
वेट, आपको यकीन है कि पुलिस ने राजेश मेहता की वाइफ अंजलि से बात की है?
यस, आई एम श्योर अबाउट इट। और राजेश मेहता जब मरा तो वो कहाँ थी?
बेंगलोर में। एक मिनट वकील साहब, ये फोटो देखिए, क्या आप इसी अंजलि मेहता की बात कर रहे हैं?
हाँ, यही तो है।
संदीप सक्सेना गुस्से में पागल हो उठता है। वो अंजलि की तस्वीर फाड़ डालता है और गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाता। एक घंटे बाद रकाबगंज पुलिस स्टेशन में।
हेलो, इंस्पेक्टर विराट स्पीकिंग।
साहब, वो संदीप सक्सेना वापस आ गया है।
कहाँ देखा तुमने उसे?
MG रोड पर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, तिलक रोड की तरफ गया है वो।
अच्छा, इसका मतलब राजेश मेहता के घर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं भी पहुंचता हूं।
उधर सक्सेना के लाल कलर की मारुति जैन कार राजेश मेहता के घर के आगे रुकती है।
अरे, दरवाजा खोलो अंजलि, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर।
क्रोध से पागल हो चुका संदीप दरवाजे को धक्के मार मार कर तोड़ देते।
अंजलि, तुमने सोचा कि मुझे बेवकूफ बनाकर तुम बच लोगी, लेकिन मैं मरा तो तुम भी मरोगी।
संदीप, क्या हो गया?
जस्ट शट अप। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया, मेरे हाथों तुमने राजेश मेहता का खून करवा दिया। अंजलि, अब तुम नहीं बचोगी। वो खून के धब्बे, तुम जानती थी कि ये सब देखकर मुझे गुस्सा आएगा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया।
नहीं नहीं संदीप, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी बात सुनो।
धोखा किया तुमने मेरे साथ, मेरे साथ तुमने धोखा किया। तुम्हारी वजह से मैंने राजेश मेहता को मार डाला।
आज 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 तुम भी नहीं बचोगी, नहीं बचोगी तुम आज। नहीं नहीं संदीप, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
देखता हूँ तुम्हें आज कौन बचाता है। यही बेडरूम है ना जहाँ तुम मरी थी, आज तुम यही मरोगी, तुम सचमुच की मरोगी। देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है।
उधर इंस्पेक्टर विराट अपनी टीम के साथ राजेश मेहता के घर के बाहर पहुँचते हैं।
इस घर को चारों तरफ से घेर लो, सारे एग्जिट पॉइंट बंद कर दो। आज सक्सेना किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाना चाहिए।
हवलदार तुम यही ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ।
साहब मैं आपके साथ चलूं?
नहीं, तुम यही बाहर निगरानी रखो, मैं देखता हूँ।
अच्छा साहब। इधर संदीप गुस्से से पागल अपने हाथ में चाकू लिए अंजलि के पीछे पड़ा है।
यही मरी थी ना तुम, आज यही असली खून बहेगा, तेरा खून।
नहीं नहीं संदीप, मुझे माफ कर दो प्लीज।
यही तुम झूठ की मरी थी ना, आज सच का मरोगी। देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हें। ड्रॉप दैट नाइफ सक्सेना और आई विल शूट यू। ओ विराट आओ, तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए।
सक्सेना, इस बात के तो पहले ही काफी सबूत है कि तुमने ही राजेश मेहता का कत्ल किया है, और अब मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेजने वाला हूँ।
नहीं नहीं विराट, राजेश मेहता का खून मैंने नहीं किया है, अंजलि ने किया है।
बकवास मत करो, राजेश मेहता का कत्ल तुमने ही किया है।
नहीं विराट, अंजलि ने मुझे एक दिन अपने घर पर बुलाया था और इसके मुंह पर चोट के निशान थे। इसने मुझसे कहा था कि इसका पति रोज इसे मारता है। दूसरे दिन जब मैं यहाँ आया तब इसे गायब पाया, और यहाँ पर सब तरफ खून के निशान थे विराट। मुझे लगा कि इसके पति ने इसे मार डाला, तो मैंने गुस्से में राजेश मेहता का खून कर दिया।
अच्छी कहानी है सक्सेना, पर अब कोई कहानी नहीं चलने वाली।
तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो विराट, तो ठीक है, कर लो अरेस्ट कर लो मुझे, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
रही बात सबूत की, तो कोर्ट में मेरे वकील तुम्हारे सारे सबूतों की धज्जियां उड़ा देंगे। अरेस्ट मी विराट, प्लीज अरेस्ट मी। आई सेड थ्रो द नाइफ एंड कम आउट सक्सेना।
ठीक है, तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, कोशिश करके देख लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा, मैं सबको खरीद लूंगा।
अच्छा, तो तुमने ये भी सोच रखा है?
ऑफ कोर्स, मैं सब कुछ जानता हूं विराट।
एक बात को छोड़कर सक्सेना, कि राजेश मेहता का कत्ल तुम्हारे हाथों करवाया गया है, तुमने क्या सोचा? इतना बड़ा प्लान अंजलि ने अकेले बनाया? क्या ये नहीं हो सकता कि इसमें कोई और भी इन्वॉल्व हो?
क्या मतलब?
तुम कॉलेज के जमाने को भूल रहे हो सक्सेना, मैं तब भी तुमसे इंटेलिजेंट था और आज भी हूं।
इसका मतलब तुमने और अंजलि ने मिलकर ये सब?
मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। ये तुम्हारा गुस्सा मैं जानता था, उस खून से सने कमरे को देखकर तुम गुस्से से पागल हो जाओगे और उसके बाद हमारे जाल में फंसते चले जाओगे। पिछले 4 साल से मुझे इसी दिन का इंतजार था सक्सेना, कि हमारी और अंजलि की शादी हो सके। अब हो जाएगी, थैंक्स टू यू सक्सेना।
लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ विराट, अंजलि से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं होगी।
क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम कर ही क्या सकते हो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सब सबूत हैं। तुमने राजेश मेहता का कत्ल किया और आज उसकी विधवा को धमकाने आए हो, और जो अब होने वाला है उस पर किसी को एतराज नहीं होगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा सक्सेना, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। अंजलि पर चाकू से हमला करते हुए तुम मेरी गोली से मारे गए। गुड बाय सक्सेना, गुड बाय।
अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी क्रोध। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।